Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
बालक नचिकेता को ऐसी चीज नहीं चाहिए जो अपने से बहुत दूर है, दूसरे देश में है, साध्य नहीं है। जाके पाई जाने वाली चीज बालक नचिकेता का लक्ष्य नहीं है। तो बोले जान के पाए जाने वाला, और वो कौन है? अपनी आत्मा है। अपने आप को जानना चाहते हो, वो आत्मा को जानना चाहते हैं। और आत्मा का जो जानना है, आत्मा का जो पाना है, आत्मरूप मोक्ष पाना है, वो जाके नहीं, वो जान के पाना है। यहां जाना नहीं है, यहां केवल जानना है। हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को जानना है, अपने आप को पाना है। और सचमुच हम अपने आप को पूछे, हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय क्या है? आप थोड़ा खोजिए, अपने आप में खोजिए, आपका परिचय क्या है? आपको कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आपको उस समय कौन सी फील होती है? उस समय तत्क्षण शरीर की फीलिंग है, इंद्रियों की है कि आत्मा की है? उस समय हम अपना परिचय देते हैं कि हम अमुक नाम वाले व्यक्ति हैं, अमुक गोत्र वाले, ये हमारा सरनेम है, हम अमुक जगह पर रहते हैं। ये परिचय किसका है? ये तो शरीर का परिचय है। हम सुनने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, ये तो इंद्रियों का परिचय है। आप बोलते हैं, हम चलने वाले हैं, चल रहे हैं, ये परिचय किसका है? पैरों का परिचय। ले दे रहे हैं तो हाथों का परिचय, देख रहे हैं कान का, आंख का परिचय, सुन रहे तो कान का परिचय, भोजन कर रहे तो आप बोल रहे हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करने वाले आप तो जिह्वा का परिचय, हाथ का परिचय, आप मुख में अपना हाथ ले जा रहे हैं, ये परिचय किसका है? ये तो शरीर का परिचय है, इंद्रियों का परिचय है। ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे हम बहुत बुद्धिमान हैं, ये बुद्धिमान होने का परिचय, बुद्धि का परिचय है। आखिर फिर हम कौन हैं? आप बोले मैं स्त्री हूं, ये शरीर का परिचय। पुरुष बोले तो भी आपका शरीर का परिचय। आप बच्चे हैं, छोटे हैं तो बचपन का, युवा है तो शरीर का परिचय है। ये अवस्थाएं भी जो हैं, ये शरीर की हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी उसको पकड़ के ले जा रहे थे स्कूल, मैंने प्रत्यक्ष देखा। बहुत छोटा था वो, उसको अपना नाम भी बोलना नहीं आ रहा था, उसको इतना छोटा सा बच्चा था। शायद पहले दिन घटना घटी हो, उस बच्चे को टीचर ने पूछा होगा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम अपने घर का बता दिया, बबलू। लेकिन उसका नाम बबलू थोड़ी था, वो रजिस्टर्ड नाम कुछ और था, राम सिंह कुछ ऐसा नाम। उस बच्चे ने बोला बबलू बबलू बबलू, तो उस बच्चे को पिताजी सिखा रहे थे उसके, बोले देख मैडम जब बोलेगी तेरा नाम क्या है तो तुम बोल देना राम सिंह, बोलेगा ना? बोले ठीक है बोलूंगा। क्या बोलेगा? बोले बबलू। अरे बोले नहीं, तेरा नाम बबलू नहीं है, घर में प्रेम से बबलू बोलते हैं, तुम्हारा नाम राम सिंह है। और टीचर जैसे पूछेगी तुम्हारा नाम क्या है तो तुम बोल देना कि मेरा नाम राम सिंह है, तो क्या बोलेगा? फिर उस बच्चे ने बोला बबलू। अब उसके मन में इतनी गहरी भावना कि मैं तो बबलू हूं और ये पिताजी क्या बोल रहे हैं, राम सिंह। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया उस घटना को देखकर। हमारी भी स्थिति ऐसी है, हमको बताया गया कि तुम अमुक आदमी हो, हमको बताया गया कि तुम अमुक स्त्री हो, पुरुष हो, और जब सत्संग में आते हैं तो आपको क्या बताया जाता है कि तुम सच्चिदानंद हो। बार बार आपको समझाया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से परे। जन्मता मरता ये विक्रिया को प्राप्त होता ये शरीर है और हम तो आत्म तत्व हैं, इस विक्रिया के दृष्टा अलग हैं, लेकिन अब पता नहीं है ना, उसका तो पता नहीं है। आखिर परिचय क्या है, ध्यान देना। इसलिए बोला है तम दुर्दर्शम, जो आत्म तत्व बहुत दूरदर्श है। हमारी जितनी अनुभूतियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियों की अनुभूतियां, ज्ञानेन्द्रियों की अनुभूतियां, ये सारी अनुभूतियां शरीर की हैं, इंद्रियों की अनुभूतियां हैं, और हमारी पहुंच भी यहीं तक है। आत्म तत्व दूरदर्श है, परिचय क्या है। बालक नचिकेता पाना चाहते हैं शरीर से परे, इंद्रियों से परे, जो आत्म तत्व है, और वो बहुत दूर नहीं है, यहीं है। किस रूप में, भगवान ने बोला सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, इसी हृदय में, जो अहम के रूप में है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित, इसी शरीर में जो अहम के रूप में आत्मरूप परमात्मा, उसको जानना है, उसको पाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं, केवल पहचानना है, ये लक्ष्य है। आप ध्यान देना, बालक नचिकेता का लक्ष्य बहुत दूर, बहुत दूसरे काल में अथवा दूसरे रूप में पाना नहीं है, अपने आप को पहचानना है। आत्मरूप परमात्मा ही बालक नचिकेता के जिज्ञासा का विषय है। आप ये बात याद रखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब अपने आप को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा। एक मैं दृष्टांत बता देता हूं। एक कोई रामलाल आदमी, बड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी है, पत्नी बहुत समझदार है, घर के सारे काम उसकी पत्नी करते, रामलाल तो केवल बैठ के खाता है, सोता है बेचारा। पुराने जमाने की पत्नी है उसकी, संभालती है अपने पति को परमेश्वर की तरह। एक दिन की बात है, पत्नी ने अपने पति को बोला आज बहुत काम है मेरे पीछे, और तुम बाजार में जाके सब्जी ले आओ। रामलाल ने कहा कि जाऊं तो जरूर, लेकिन मैं कहीं खो गया तो क्या होगा। रामलाल ने कहा कि मैं खो गया तो क्या होगा, इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, पत्नी समझ गई कि आज इनको जरूर भेज दूंगी। इतना बेवकूफ जो बाजार जाने में भी डरता है, खोने से डरता है। उसने कहा नहीं खोगे, मैं एक ऐसी युक्ति कर दूंगी तुम्हारे साथ। उन्होंने अपनी रिब्बन निकाली, रामलाल के पैर में बांध दी, और रामलाल को उन्होंने कहा कि तुम नहीं खोगे क्योंकि तुम्हारे पैर में मैंने रिब्बन बांधी है। बड़ा प्रसन्न हो गया रामलाल, पैर में रिब्बन बंधी थी, पैसा लिया उसने, बैग ली, बहुत प्रसन्नता से बाजार गया। संयोग से उस दिन बहुत भीड़ थी बाजार में, और एक जादूगर जादू दिखा रहा था, गोल गोल लोग खड़े थे। रामलाल ने सोचा कि चलो देख तो ले यहां क्या चल रहा है। रामलाल पहुंचा उस भीड़ में, जादूगर ने अपना जादू दिखाते दिखाते पिटारी से सांप निकाला उसने, और लोगों का मनोरंजन करने के लिए उस सांप को लोगों की तरफ उछाल दिया, भीड़ फट पड़ी, लोग एक के ऊपर दूसरा गिरने लगे, उसमें रामलाल भी गिर गया, और किसी का पैर रामलाल के उस रिब्बन पर पड़ गया, रिब्बन टूट गई। रामलाल बैठ गया, सबसे पहले रामलाल की दृष्टि पड़ी मेरे पैर में रिब्बन है कि नहीं, देखा रिब्बन टूट चुकी थी। रामलाल समझ गया कि मैं खो गया, और रामलाल रोने लगा, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, बैठ गया। घंटा बीता, दो घंटे बीते, पत्नी परेशान घर में कि अभी तक रामलाल नहीं आया, क्या हुआ। दौड़ी दौड़ी गई, देखा रामलाल बैठकर रो रहे थे। पत्नी ने कहा यहां क्यों बैठे हो, हमको बेइज्जत करते हो, चलो घर। उसने कहा तुम समझती नहीं, मैं तो खो गया, मैं घर कैसे जाऊं, मैं तो खो गया, पत्नी ने कहा तुम खोए नहीं, मेरे सामने हो तुम। उसने कहा नहीं खो, मैं खो गया, मेरे पैर में रिबन कहां है। समझ गई वो, बड़ी समझदार थी, अपने दूसरी रिबन उतारी, बालों में बंधी हुई थी, और उसने पैर में बांध दिया। और जैसे ही पैर में बांधा, उसी समय रामलाल बहुत प्रसन्नता से चिल्ला पड़ा कि मैं मिल गया। रामलाल सचमुच खोया था क्या? वो सचमुच नहीं खोया था, खोने का केवल भ्रम हो गया था उसको। रामलाल सचमुच मिल गया क्या? जो खोने का भ्रम था वो भ्रम टूटा। रामलाल मिला क्या? रामलाल को रामलाल मिला न? रामलाल को रामलाल मिला और न कभी वो खोया था। मध्य में केवल खोने का भ्रम हो गया था और पत्नी ने उस खोने के भ्रम को हटा दिया। हमारी स्थिति भी ऐसी, रामलाल की तरह स्थिति है। हम खोए हुए हैं, हम नहीं जानते हम कौन हैं। हम भीड़ में खोए हैं, और वो दोनों प्रकार की भीड़, बाहर भी भीड़ अंदर भी भीड़। ये दुनिया के शब्दादि पदार्थ और अंदर वासनाएं, जलन, घृणा, ईर्ष्या, मालूम नहीं पड़ता हम कहां हैं, कौन हैं। और इस भीड़ से हमको पहचान देते हैं शास्त्र, गुरु, और उसके बाद आप घर चले जाते हैं। सत्संग में महात्मा लोग रिबन बांध के भेज देते हैं, और घर जाने के बाद कोई ना कोई उस रिबन पर पैर रख देता है, और उसके बाद फिर हम खो जाते हैं। यहां केवल पहचानना है, जैसे रामलाल खोया ना वैसे हम खोए हैं। हम अपने आप को नहीं जानते, बेहोश। सचमुच वासना हमें बेहोशी में ले जाती है, विकार हमें बेहोशी में ले जाते हैं। हमारे सामने भोजन आते ही हम होश खो देते हैं, बाहर के पदार्थ दिखते हम होश खो देते हैं। हम अपने आत्मा को नहीं जान पाते, अपने स्वभाव को नहीं जान पाते, स्वभाव में नहीं रह पाते। शरीर से अतिरिक्त जो सच्चिदानंद आत्मा है, वहीं यहां पर मोक्ष उसको पाना है। कितना सरल है ये, कितना कठिन है, दोनों चीजें हैं। अपने आप को जानना, और हम अपने से जितना निकट उतना दुनिया में कोई चीज नहीं। अब अपने आप को जानने का मार्ग क्या होगा, अब उस पर चर्चा करते हैं हम। दूर का कोई मार्ग हो जाना हो तो आपको बहुत सारा डिस्टेंस पार करके जाना होगा, लेकिन अपने ही पास कोई चीज है और वो खो चुकी है। अज्ञान से, भ्रम से अपने को ऐसा लगता है कि वो चीज हमको नहीं मिली है, उसको पाना है आपको, तो क्या करना होगा? वस्तु तो मुझे लगता है यहां करना कुछ नहीं, केवल समझना है। यहां केवल समझना, इसलिए कहा तम दूरदर्शम। वो बहुत दूरदर्श है। हमारे पांच पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन है, पांचों ज्ञानेन्द्रियों से हम उसको नहीं जान सकते। अपने आप को आंख से कैसे जानेंगे? आंख केवल परिचय देता है रूप का, आंख केवल परिचय देता है बाहर के पदार्थों का। आपको मालूम पड़ता है कि ये नीला है, ये पीला है, ये माइक है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है। आंख केवल इतना ही परिचय देता है, रूप और रूप के आश्रय का परिचय देता है आंख, और कान केवल शब्द का परिचय देती है, नाक केवल गंध का परिचय देती है, सुगंध का परिचय, दुर्गंध का परिचय देती है। आप भोजन करते हो स्वाद का परिचय, खट्टा मीठा। हमारी त्वचेंद्रिय स्पर्श का परिचय देती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच आपके सामने विषय हैं, और ये पांचों शब्दादियों के आश्रय पदार्थ हैं। शब्दादि विषय, उसके आश्रय विषय, हम पांचों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा कितना भी प्रयत्न करें, इससे ज्यादा हम अनुभूति नहीं कर सकते। एक मन है, मन के बाद, मन से हम कितना सोच सकते हैं, मन के द्वारा क्या मालूम पड़ता है, यही मालूम पड़ता है। अंदर अंदर की चीजें मालूम पड़ती हैं, सुख दुख मालूम पड़ते हैं, अंदर के भावनाएं मालूम पड़ती हैं, काम क्रोध लोभ मद जलन घृणा ईर्षा प्रतिशोध हमारे अंदर मन की भावनाएं हैं और ये शरीर पर प्रकट होती जाती हैं, मालूम पड़ता है अंदर मन के द्वारा मालूम पड़ता है। हमारे पास दो सशक्त इंद्रियां हैं, ध्यान देना, एक कान और दूसरा मन। एक कान है और दूसरा मन है। केवल उसको जानने के दो ही उपाय हैं, अपने आप को पहचानने के दो ही उपाय, एक मन और दूसरा कान। कान से सुनो, रामलाल ने क्या किया, सुना, भ्रम हुआ था कि नहीं, पत्नी ने कहा कि तुम वही हो, तुम खोए नहीं हो, और रिबन बांध दिया। कान से हमें श्रवण करना है अपने बारे में, शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में, और वहां पार्थक्य करना, अलग अलग करते जाना। मने में इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, इस देह से परे अहम तत्व, और वो श्रवण के द्वारा आंतरिक एक निर्मल विचार को पैदा करना है। श्रवण के द्वारा सुनकर हमें आंतरिक एक दिव्य चेतना को प्रकट करना है, और उस दिव्य चेतना में हम अपने आप को जान सकते हैं। उसी को आत्मज्ञान बोला, उसी को ब्रह्मज्ञान बोला है। मनसा एव इदम् आप्तव्यम् दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। हम श्रवण मनन निदिध्यासन अच्छे कर्म करें, निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, ध्यान उपासना से मन की एकाग्रता, श्रवण से दिव्य विचारों का निर्माण, आत्मिक दिव्य विचारों का निर्माण, और उसके बाद फिर आत्मदर्शन। इसलिए उन्होंने कहा कि दूरदर्श है, माने इसको जानने के लिए बहुत साधना करनी है, बहुत लंबे समय तक सत्संग करना है, मन को निर्वसन बनाना है, मन को निर्वसन और एकाग्र, मन को निर्वसन और एकाग्र किए बिना हम उसके द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। केवल मन को निर्वसन बनाना है, मन को एकाग्र बनाना है, और मन में दिव्य चेतना का अवतरण करना है। ये तीन चीजें, निर्वसन करना, मन को एकाग्र करना, और दिव्य चेतना का उसमें अवतरण करना है, और उसके बाद फिर हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने कहा दूरदर्श, और ये दूरदर्शता जो है ये साधक के ऊपर निर्भर करती है। आप साधना कर रहे हैं तो आप साधना में कितना डूबे हुए हैं। आप लोगों ने श्रेष्ठ एक सिद्ध व्यक्ति के जीवन के बारे में सुना होगा, राजा जनक। राजा जनक ने एक स्वप्न देखा था। हम लोग भी सत्संग का श्रवण करते हैं, ये सारी दुनिया, ये संसार मिथ्या है, यहां प्रेमपुरी में आप सत्संग श्रवण करते हैं, ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि संसार मिथ्या है, हजारों बार सुना होगा। ये संसार क्या है, मिथ्या है, सुना होगा ना, पक्का हजारों बार। लेकिन सही, हम एक रुपए के लिए भी झगड़ा कर सकते हैं बहुत अच्छी प्रकार से, अभी अभी तो सुना मिथ्या है और झगड़ा शुरू। हम भी जानते हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, अभी हमारे विचार सत्य हैं, आग्रह दुराग्रह सत्य हैं, जलन घृणा ईर्ष्या सत्य हैं, सारी चीजें सत्य हैं। हम सुनते जाते हैं मिथ्या, लेकिन हमारा संपूर्ण व्यवहार सत्य की तरह होता है। राजा जनक ने स्वप्न देखा, बहुत मजेदार स्वप्न था। स्वप्न क्या था, दिव्य ज्ञान स्वप्न के रूप में मानो प्रकट हो गया, और वो स्वप्न देख रहे थे कि मैं भिखारी बन गया हूं, मैं भिखारी बना हूं। ये स्वप्न कोई मजेदार तो नहीं बन, आप स्वप्न में भिखारी बने तो आप उस स्वप्न को मजेदार कहोगे? केवल देखने के अर्थ में मजेदार नहीं है, उसका रिजल्ट देखना। अनुभव कर रहे थे कि मैं राजा बना हूं, मैं भिखारी बना हूं और भीख मांग रहा हूं, राजा और स्वप्न देख रहे हैं भीख मांगने का, कोई भीख नहीं दे रहा है। बहुत प्रयास पूर्वक थोड़ा सा भीख मिला, बहुत भूख है उन्हें, कहीं मिट्टी की हंडी मिली और वो मिट्टी की हंडी आग के ऊपर रखकर वो चावल पका रहे हैं और वो सोच रहे थे राजा जनक कि चावल पकेगा मैं खाऊंगा, बहुत भूखा हूं, सोच के आनंद का अनुभव कर रहे थे। उसी समय दो लड़ते हुए सांड आ गए और दोनों के बीच में वो मिट्टी की हंडी आ गई और गिर गई, सारा चावल बिखर गया, बैठ के रोने लगे, हाय हाय अब क्या खाऊं मैं, भूखा हूं मैं, रो रहे थे, रोते रोते आंख ऐसी झपकी लगी और इधर इनकी नींद टूटी और वो अनुभव करने लगे मैं तो सोने के सिंहासन पर मखमल के गद्दों पर बैठा हूं, सो रहा हूं, ये क्या बात है। अब वो सोचने लगे नारायण, स्वप्न देखा उन्होंने और स्वप्न क्या देखा उनकी जागृति ही संदिग्ध हो गई। अब वो सोचने लगे जैसे राजा जनक सोकर भिखारी बनने का स्वप्न देख सकता है, तो भिखारी भी तो सोया था स्वप्न में रोते रोते, कहीं ऐसा तो नहीं कि भिखारी का स्वप्न हो राजा जनक बनने का। अब वो सोचने लगे मैं राजा जनक हूं, ये कहीं भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। ध्यान देना, इस स्वप्न में यही रहस्य है, स्वप्न में यही रहस्य है। जो मजेदार स्वप्न में बोल रहा था यही इसका मजेदारपना है। आज राजा जनक सोच रहे थे कि मैं राजा जनक हूं, ये कहीं भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। राजा जनक का भिखारी होना एक स्वप्न है, तो एक भिखारी का राजा जनक होना स्वप्न क्यों नहीं हो सकता है। अब वो राजा जनक अपने आप को देखने लगे हो छू के, ये भिखारी का स्वप्न तो नहीं है, भिखारी सोया था ना, स्वप्न तो हम भी देखते हैं। लेकिन आज राजा जनक ने ऐसा स्वप्न देखा कि जागृति भी संदिग्ध हो गई, जागृति भी संदिग्ध हो गई। अब वो सोचने लगे सत्य क्या चीज है, मालूम होने लगा कि ये राजा जनक बनना भी एक स्वप्न, भिखारी का स्वप्न हो सकता है। और कल्पना करो कि जीवन स्वप्न मालूम पड़े तो आपका आचरण कैसा होगा। फिर जब राजा जनक को मालूम होने लगा कि मैं राजा और ये सुख संपत्ति वैभव, और जब उनके सामने उनकी रानियां पुत्र वगैरह आने लगे तो वो क्या उसके प्रति क्या दृष्टिकोण था। उस समय भी सोच रहे थे ये स्वप्न तो नहीं, पत्नी आके पूछी क्या बात है, आज गुमसुम मालूम पड़ रहे हैं, तो वो अनुभव कर रहे थे कि स्वप्न में तो नहीं बोल रही है। आप कल्पना करना उस समय राजा जनक की क्या स्थिति रही होगी, स्वप्न तो स्वप्न है, कहीं महत्व नहीं रहा, आसक्ति गिरने लगी, सत्य तो वो झरने लगा। अब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, केवल वो वर्तमान में थे और वो हर चीज स्वप्न उन्हें मालूम पड़ने लगा था। कई महात्माओं को पूछा उन्होंने, अपने स्वप्न की बात बता दी लेकिन सही पता किसी से मालूम नहीं हो रहा था। अंत में मिले कौन, अष्टावक्र मिले, और जैसे ही नारायण उन्हें स्वप्न सुना, आहा हा बोले राजन बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, आपके अंदर कुछ हो रहा है, आप ज्ञान को पाने के योग्य बन रहे हो, तुम्हारी जो साधना पैदा हुए से लेकर आज तक और अनंत जन्मों में भी जो साधना की है आज उसका फल मिलने वाला है, तो बहुत ऊंची स्थिति में है। आज वो स्वप्न स्वप्न नहीं रहा, वो स्वप्न आपके जीवन की दिव्य अनुभूति बन गई है। और बस एक ही वाक्य बोला, बोले वो भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है, बोले जैसा वो स्वप्न वैसा ये भी स्वप्न है, और तुम तो आत्मा हो इसके दृष्टा साक्षी। उसी समय ज्ञान हो गया उनको, अष्टावक्र को कुछ करना नहीं पड़ा, एक दो वाक्य बोला और उनको ज्ञान हो गया। लेकिन हम लोगों के लिए यदि ये ज्ञान पाना हो तो बोले तम दुर्दर्शम, वो योग्यता नहीं है। और आप उनको पूछना राजा जनक को कि इसको पाना कितना अरे वो बोलेंगे चुटकी बजाते हो जाता है ज्ञान, ध्यान देना। इसलिए ये जो दूरदर्शिता का, दुर्गमता का, दुर्लभता का जो यहां उल्लेख किया है वो साधक के जीवन को देखकर, इसलिए आप घबराना नहीं, बहुत कठिन है। क्या मालूम आपने पता नहीं कितने जन्मों की साधना आपके अंदर पड़ी हो, क्या पता वाक्य यही उपदेश आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाए, अनंत जन्मों की साधना आप में प्रकट हो जाए। आपको कुछ पता है आप कब से साधना कर रहे हैं, आपके भीतर कितनी योग्यता है हमें पता नहीं। इसलिए निरंतर साधना करते 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 अपने आप कई बार अंदर से आलोक हो जाता है, दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक बार परम पूज्य रामकिंकर जी महाराज, उनको मैं ब्रह्मज्ञानी मानता हूं, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे, वो रहते थे बाह्य जीवनी में, बहुत मस्ती से रहते थे, लेकिन बहुत दिव्य अनुभूति संपन्न महापुरुष थे। एक बार मैंने उन्हें पूछा, आपने अपने जीवन में जो पाया वो कैसे पाया, बड़ी अद्भुत बात बताते। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत साधना की, बहुत साधना की, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं जान पाया, लेकिन बोले वो चीज मेरे जीवन में ऐसे समय आई जिस समय वो आने की कोई संभावना नहीं थी। समझ में आएगी, हो सकता है भोजन करते समय अनुभव हो जाए, हो सकता है कि आप पिक्चर देखने के लिए जा रहे थे, बहुत अच्छे साधक, इसका अर्थ ये नहीं कि कभी आप पिक्चर ना देखे हो, आप व्यापार करने के लिए जा रहे हो और चलते चलते रास्ते में अचानक मौत हो जाए। आप निरंतर साधना करते जाए और पता नहीं कब होश में वो ज्ञान की वृत्ति उदित हो जाए। इसलिए यहां दूरदर्श कहा, मने हमें साधना करना है, बहुत कठिन है, बिना साधना के आगे नहीं बढ़ सकते। निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन लभ्य है, पुरुषार्थ लभ्य है, इसको दिखाने के लिए बालक नचिकेता को आचार्यम ने कहा, तम दूरदर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम। आगे और कहेंगे, उसका उल्लेख करेंगे, अभी आप सीधे बैठ जाए। ॐ नमः शिवाय,
नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय,
नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय,
नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।